हवेली के गेट पर कार रुकी तो रात पूरी तरह उतर चुकी थी। इंजन बंद करते ही सन्नाटा और गहरा हो गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। आर्यन कुछ पल गाड़ी में ही बैठा रहा, हाथ स्टीयरिंग पर टिके थे, नजर सामने, जैसे अगर वो अभी उतरा तो उसे किसी फैसले की तरफ चलना पड़ेगा और वो फैसला उसे नहीं पता। आखिरकार उसने दरवाजा खोला। हवेली वही थी, ऊंची, शांत और हमेशा की तरह अपने भीतर बहुत कुछ छुपाए हुए। आंगन में लगी लाइट्स बुझ चुकी थी, बस बरामदे के पास एक पीली बत्ती चल रही थी जो दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। उसने जूते उतारे, कदमों की आवाज अपने ही कानों में अजनबी लग रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका मन फिर भटक गया। खाली रास्ता, पार्क, शामली की हंसी, सब एक एक कर भीतर उभर रहा था और उसी के साथ आज का सच। वो ऊपर पहुंचा। कॉरिडोर में हल्की सी रोशनी थी, सब कमरे बंद थे, हवेली सो चुकी थी। चलते चलते वो अचानक रुक गया। सामने एक दरवाजा, उस कमरे का दरवाजा, पिता का कमरा, विश्वनाथ और शामली का कमरा। आर्यन के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसने कभी जानबूझकर उस कमरे की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी, ये एक अनकहा नियम था, कुछ चीजों को ना देखना ही बेहतर होता है। लेकिन आज उसके भीतर कुछ थमा नहीं, उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। कब से वो एक साथ सोते होंगे? क्या शामली आज भी हंसती होगी वैसे ही? क्या वो उसके पिता के साथ भी उतनी ही सहज है? उसका दिल कसने लगा। वो अब तुम्हारी माँ है, उसने खुद से कहा, धीरे, जैसे खुद को समझा रहा हो। फिर भी उसका हाथ अनजाने में दरवाजे की कुंडी तक चला गया। एक पल की हिचक और फिर दरवाजा हल्के से खुल गया। कमरे के भीतर हल्की नीली रोशनी थी, खिड़की के बाहर चांदनी छनकर आ रही थी। बिस्तर पर विश्वनाथ और शामली सो रहे थे, एक ही बिस्तर पर। विश्वनाथ की पीठ उसकी तरफ थी, शामली करवट लेकर सोई थी। उसका चेहरा शांत, बिल्कुल वैसा जैसा आर्यन ने कभी जाना था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये कोई अचानक झटका नहीं था, ये वो दर्द था जो धीरे धीरे भीतर उतरता है और हर सांस के साथ भारी होता जाता है। उसने तुरंत नजर हटा ली, दरवाजा वापस बंद कर दिया। कॉरिडोर में खड़ा आर्यन कुछ सेकंड तक हिल भी नहीं पाया। उसकी छाती में अजीब सी जलन थी, गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बस एक गहरी थकी हुई चोट। वो जानता था ये सब गलत नहीं है, शामली ने कोई अपराध नहीं किया, उसके पिता ने भी नहीं, गलत बस उसकी यादें थीं और उसका दिल। वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा बंद किया, पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। कमरा अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की रोशनी। उसने आंखें मूंद ली। शामली का चेहरा फिर उभरा, पार्क, किताब, हंसी, आदत पड़ जाती है, उसने दांत भींच लिए। मैं उसे भूल नहीं सकता, उसने खुद से कहा बिना आवाज के। और अदिति, उसका चेहरा सामने आया, नरम मुस्कान, बिना सवाल की मौजूदगी, वो हाथ जो बिना मांगे आगे बढ़ जाता है। अदिति, वो तो बस। आर्यन बिस्तर पर बैठ गया, मुझसे पागल है, उसके शब्दों में कटुता नहीं थी, बस थकान थी। उसे पता था कुछ महीनों में उनकी शादी होने वाली है, सब तय है, परिवार खुश है, समाज खुश है, सब सही है, सिवाय उसके दिल के। वो दोनों दुनियाओं के बीच अटका हुआ था, एक बीते हुए प्यार और एक आने वाले रिश्ते के बीच। शामली, जिसे वो छू नहीं सकता, अदिति, जिसे वो पूरा नहीं दे सकता। उसने करवट बदली, तकिया चेहरे पर रख लिया। मैं क्या करूं, ये सवाल आज फिर उसके साथ था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। थकान धीरे धीरे भारी होने लगी, सोचें धीमी पड़ने लगी। आखिरकार उलझनों के बीच ही नींद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कमरा फिर खामोश हो गया, हवेली सोती रही और आर्यन अपने सवालों के साथ सो गया।
अगली सुबह हवेली में हलचल थी, रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी, बाहर गेट के पास गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज और सीढ़ियों पर हल्के हल्के कदमों की आहट। आर्यन तैयार होकर नीचे उतर रहा था, कंधे पर बैग, चेहरे पर वही संयम जिसके पीछे रात की पूरी उथल पुथल छुपी हुई थी। कॉरिडोर के मोड़ पर अचानक सामने से विश्वनाथ आ गए। वो भी तैयार थे, सूट हाथ में, फाइल, घड़ी देखते हुए जल्दी में। दोनों एक पल के लिए रुक गए। विश्वनाथ ने पहले बात की, आवाज में हल्की सी सख्ती और उससे ज्यादा अपनापन। कल सबने बहुत कुछ कहा आर्यन, उन्होंने चलते चलते कहा, लेकिन मेरे बेटे ने कुछ नहीं कहा। आर्यन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो जानता था ये शिकायत नहीं थी, बस पिता की उम्मीद थी। पापा, उसने सहज लहजे में कहा, आपकी तारीफ में क्या ही कहूं, आपने देखा था ना, कल सारी लड़कियां आपको ही देख रही थी। विश्वनाथ ठिठक गए, भौहें ऊपर उठी। ओ, उन्होंने नकली हैरानी दिखाई। आर्यन ने शरारत से आगे जोड़ा, और अदिति, पहली बार आपको देखकर आपको मेरा बड़ा भाई समझ बैठी थी। एक पल को कॉरिडोर में हल्की हंसी गूंज गई। अच्छा, विश्वनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, तो अब अपने पापा की टांग खींचने लगा है। सीखना तो आपसे ही पड़ा है, आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो दोनों साथ साथ कुछ कदम चले, एक साधारण फादर एंड सन की तरह, जैसे रात की कोई परछाई वहां मौजूद ही ना हो। तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई, हल्के कदम, कपड़े की मुलायम सरसराहट। दोनों की बातें अपने आप रुक गईं। श्यामली सामने से आ रही थी, हल्के रंग की साड़ी, बालों में सादा सी क्लिप, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर नींद के बाद की वो शांति जो किसी को और बेचैन कर सकती थी। विश्वनाथ की नज़र उस पर ठहर गई, सहज, आदतन, और आर्यन, उसकी नज़र भी, बस एक पल के लिए, लेकिन उस पल में बहुत कुछ था। श्यामली ने उन्हें देखा, हल्की सी मुस्कान आई। कॉलेज और ऑफिस दोनों एक साथ निकल रहे हैं, उसकी आवाज नरम थी। हाँ, विश्वनाथ ने कहा, आज थोड़ा जल्दी है। श्यामली ने सिर हिलाया, उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। नाश्ता नहीं किया, साधारण सवाल था। आर्यन ने गला साफ किया, कर लिया, उसने कहा, लेट हो रहा था। उनकी नजरें फिर मिली, बस एक सेकंड के लिए, न ज्यादा न कम, पर उस एक सेकंड में पार्क, किताब, हंसी और रात का दर्द सब चुपचाप मौजूद था। श्यामली ने नजर हटा ली, ठीक है, बस इतना कहा। विश्वनाथ ने घड़ी देखी, चले। आर्यन ने सिर हिलाया, तीनों कुछ कदम साथ चले, फिर गेट के पास रास्ते अलग हो गए। श्यामली भीतर की ओर मुड़ी, आर्यन और विश्वनाथ बाहर। आर्यन ने एक बार पीछे नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कुछ चीजें देखे बिना भी साथ चलती रहती हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई और हवेली एक बार फिर खामोशी में डूब गई।